आपका तीसरा दिन है आज मेडिटेशन का हमारा। इस तृतीय दिवस में कला संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित यूनिवर्सल कल्चर फॉर लव पीस एंड हार्मनी ये इंटरेक्टिव सेशन है। जैसे आपने कल अटेंड किया था याद है आप लोगों ने, तो थोड़ा हमको इंटरेक्ट करना है यहाँ पर के स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं बोलेंगे आप लोगों को भी अपना ठीक है सक्रिय सहयोग देना है। तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज का जो विषय है आपके प्रोफेशन के लिए आपका जो प्रोफेशन है आर्ट एंड कल्चर उसमें राजयोग का क्या लाभ है। विषय है राजयोग द्वारा कला में सफलता। इस विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं और हमारे देश में हमारे जो वरिष्ठ भैया हैं आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे प्रेम दीदी हैं जो करनाल सेंटर से आई हैं आप पिछले
गेस्ट नहीं बोला था एक बार दयाल भाई ने मना किया।
आप 1987 संस्था से जुड़े हैं और 1989 से आपने ईश्वरी सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है और करुणा सेंटर जो है वहां पर आप सेवाएं दे रहे हैं। 5 सेंटर हैं और 7 उपसेवा केंद्र और 200 से अधिक गीता पाठशालाओं का सुचारू रूप से आप संचालन कर रहे हैं और आप कला संस्कृति प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो विषय है राज्य द्वारा कला संस्कृति इस विषय के ऊपर थोड़ा आपको मार्गदर्शन के इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं और इसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताएं। दीदी
परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान मंच पर उपस्थित हैं। आज के सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहन प्रिय परम कलाकार के बच्चों प्यारे कलाकार भाई और बहनों बहुत ही सुंदर विषय है आज का कि राजयोग द्वारा कला में सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है और आप सुन भी रहे हैं कहां से कि राजयोग क्या है। राजयोग का अर्थ जो है आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन कनेक्शन संबंध अथवा मिलन। तो जैसे किसी डिस्चार्ज बैटरी को जनरेटर के साथ पावर हाउस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज हो जाते हैं रिचार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी को जब परम पिता परमात्मा के साथ कम्युनिकेट किया जाता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। उसमें सभी बल सभी शक्तियां और ज्ञान पूर्ण रूप में भर जाता है। हर एक का सशक्त आत्मा बन पाते हैं और शक्तिशाली आत्मा अपने जीवन में जो भी कार्य करती है उसमें सक्सेसफुल होते ही है। तो राजयोग का अर्थ है अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने की कला सीखना अपने मन के विचारों पर राज करने की कला सीखना है। राजयोग का अर्थ जो है हम डिविनिटी की ओर अग्रसर हो हमारे जीवन में दिवत्व क्रिएट हो डिविनिटी क्रिएट हो। तो इसलिए राजयोग के द्वारा हमें हमारी लाइफ के अंदर और खासकर कलाकारों की लाइफ में जो चीजें बहुत जरूरी है वो प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे अंदर विल पावर स्ट्रांग होते हैं हमारे कौशल पशुद पैदल इम्प्रेस होते हैं, हमारा जजमेंट पैदल भी इसमें बहुत बढ़ जाते हैं। उनके समझते हैं कि ये चीजें ये कला कर के जीवन में बड़ा जरूरी है ना, तो ये सब चीजें हमें राज योग से मिलती है और हमारा लाइफ बैलेंस लाइफ हो जाती है। हमारे जीवन में देखते हैं हर एक के जीवन में, कितने कलाकारों के भी जीवन में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन की बातें भी आती हैं। उनके जीवन में बहुत ऊपर नीचा भी कई बार हो जाता है, कई बार कला इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो माइंड अनबैलेंस्ड हो जाता है, मन में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। उस स्ट्रेस क्रिएट होने से और ही हमारी कला के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। तो मन इस प्रकार से स्ट्रेस में होता है या टेंशन में होता है, तो सारे हमारी कला के अंदर जो प्रभाव होना चाहिए, जो प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए उसका, या हर कोई हमारी कला को अप्रिशिएट करे, या हर एक अट्रैक्ट हो हमारी उस कला की तरफ, उसको लगे कि कुछ डिफरेंट और बहुत बढ़िया हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं दूसरे के सामने, तो मन के ऊपर दबाव होने के कारण कई सारी बातों का अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं और हमारे कला क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो इससे मानसिक स्ट्रेस क्रिएट होने से हम अनबैलेंस्ड से हो जाते हैं और कला प्रभावित नहीं कर पाते और फिर जो है हम थोड़ा पीछे पीछे डाउन और होते चले जाते हैं। जो हम लोगों को देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और अपनी कला से उनको प्रभावित करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं और प्रश्न बन जाते हैं। तो राजयोग एक ऐसी सुंदर कला है जिससे एक प्रकार से हम आपको बताएं तो जीवन जीने की सुंदर कला सीख जाते हैं हम। हमको देखना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, सोचना, सबसे बड़ी बात सोचना कैसे है, हर वक्त हमें कैसे सकारात्मक चिंतन करना है, पॉजिटिव थॉट्स, कोई भी जीवन में बातें आए, ऊपर नीचे करने वाली बातें आए, तो भी हमें सदा ही पॉजिटिव सोचना है, ये सिखाता है राजयोग मेडिटेशन। सकारात्मक चिंतन सिखाता है क्योंकि हम अपने आध्यात्मिक बुक्स में भी पढ़ते आए हैं कि जो हमारे से अच्छा जो हो रहे हैं वो भी अच्छा और जो आगे होने वाले हैं वो वाले समय में जो होने वाला है वो अच्छा से भी अच्छा होने वाला है। पर्दे के पीछे कुछ न कुछ बहुत बढ़िया छिपा हुआ है, वो मेरे सामने आने वाला है शीघ्र ही, कुछ भी गलत नहीं है, सब बढ़िया है। शीघ्र ही मेरे जीवन में सफलता एकदम मेरे सामने आके खड़ी होने वाली है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हम सोचना सीख जाते हैं राजयोग मेडिटेशन के अंतर्गत। तो जब स्ट्रेस हमारे रिलीज हो जाता है, उससे हम मुक्त रहते हैं और हमारा मन शांत रहता है, पीसफुल माइंड होता है हमारा, तो जो हम करना चाहते हैं, जो हम दूसरों को देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से बात आता है। क्योंकि कहते हैं ना, कला जो है हमारी वो किसी को रोना भी बना सकती है और हमारी कला किसी को रोना भी बना सकती है। तो हम जो कला कर रहे हैं हमारे दूसरों के आगे अपनी कला परोसने का जो मेन मुद्दा है, मेन लक्ष्य क्या है, क्या सिर्फ हमें को बस एक्टिंग ये सब चीजें जो है वो भी करना चाहते हैं, या हर किसी को किसी के लाइफ को भी बहुत ऊंचा और बहुत एक प्रेरणा दायक किसी के लिए बन सकती, किसी के लिए हम अच्छा एक एग्जाम्पल भी बन सकते हैं, उसके लाइफ को हम मोटिवेट भी कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी की तरफ अग्रसर हो रहा है उसको पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर भी कर सकते हैं। तो ये सब हम जैसे जैसे राजयोग मेडिटेशन सीखते जाएंगे तो हमारे बुद्धि की माइंड की क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, माइंड रिफाइंड होता चला जाएगा। और फिर जो है उसके अनुसार हम जो है जो करना चाहते हैं बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारे से वो होता जाएगा जो हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो डुअलिटी क्रिएट होती चली जाएगी, क्योंकि ज्ञान रक्त चिंतन होने से और कॉन्सेंट्रेट माइंड होने से पीसफुल माइंड होने से हम बहुत अच्छे से जो करना चाहते हैं जो देना चाहते हैं वो अच्छे से दे पाते हैं। तो हम बात बता रहे थे आपको कि दुर्भिक्ष हमारे जीवन में हमारी कला भले वो पाक कला हो या रंगमंच की कला हो या वो बैक स्टेज की कोई कला हो या हमारे जीवन में बड़ी सारी कलाएं होती है, हम कहते हैं सारा कला संपन्न है ना, ऐसा हमारा लक्ष्य रहता है, क्योंकि हमारे भारत के बड़े देवतों को सारा कला संपन्न कहा जाता है। तो हर एक के जीवन में बहुत सारी कलाएं होती है, क्योंकि हम सृष्टि रूपी रंगमंच से भी कलाकार हैं, परमात्मा पिता हमारे डायरेक्टर है जो परम कलाकार है। तो इस समय बहुत सारी कलाएं हर एक के अंदर है हम, लेकिन बहुत जो हमने आपको बताया कि एक राजयोग मेडिटेशन से ये बड़ी सुंदर कला हम सीख जाते हैं कि हम स्ट्रेस के लाइफ लीड करना सीख जाते हैं और दिव्य बल संपूर्ण लाइफ जो है हमारी दिव्य बल संपूर्ण जीवन जीना सीख जाते हैं। वो एक हमारे अंदर काम की बात आती है। तो एक बात याद आती है कि एक बार जो अकबर बादशाह के मैं रत्नों में से एक थे कवि तानसेन, कवि तानसेन इतने सुंदर गाते थे कि बारिश तक बरस जाती थी उनके गाने पर। हम सब ने ये बात सुनी हुई है। तो एक बार उनके गुरु हरिदास जी थे, तो उन्होंने कहा कि जो है अकबर बादशाह ने कहा कि तानसेन जी आपके जो गुरु हैं हरिदास जी जो कि वृंदावन में रहते थे, तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे गाते हैं, उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप उनके पास मुझे लेके चलेंगे, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। तो कभी तानसेन उनको ले गए वृंदावन में, परंतु गुरु हरिदास जी का एक जीवन का जीवन में ये बात थी कि वो कभी भी किसी राजा आदि से नहीं मिला करते थे। तो अब क्या करें, कभी तानसेन उनको लेके गए तो उन्होंने कहा कि बादशाह हजूर आपको बड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़ा तो कभी भी राजा आदि से मिलते नहीं है। तो मेरे को कुछ तो हो कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा और किसी भी तरह मेरे को उनका बयान आप सुनाने का कष्ट करें। तो कभी तानसेन जी अंदर गए अपने बड़ों के पास, तो थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर उन्होंने कभी तानसेन ने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गाना स्टार्ट किया और गायन बोझ कर थोड़ा थोड़ा बहुत गा रहे थे वो, ताकि उनके गुरु जो है उसको करेक्ट करे और बोल पाए और बाहर से अकबर बादशाह सुन पाए जो लक्ष्य लेकर आए हो। तो कभी तानसेन ने गाना स्टार्ट किया, इधर हटकर हल्का हल्का जान बोझ कर थोड़े बहुत गा रहे थे। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं तानसेन ऐसे मेरे इस तरह से, तो मतलब बताने के लिए उन्होंने गाया जैसे। तो बाहर खड़े हुए जो अकबर बादशाह थे उन्होंने सुना और सुनकर के बहुत उनको जैसे कि आनंद का अनुभव, बड़ी सुंदर अनुभूति हुई, उनको सुकून मिला और उनको लक्ष्य हासिल हुआ कि वो सुनने के लिए आए थे और उन्होंने वो सुन लिया। उसके पश्चात कवि तानसेन और अकबर बादशाह वापस दिल्ली में आ गए। कुछ दिनों के बाद अकबर बादशाह ने कवि तानसेन को कहा कि जैसे आपके गुरु ने गाया था ना, ऐसे ही आप मुझको गा करके सुनाओ। तो कवि तानसेन ने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ, मैं गाता हूँ। तो कवि तानसेन ने जैसे गाने का कोशिश की, अच्छे से अच्छे अपने बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन अकबर बादशाह ने उनको कहा कि कवि तानसेन बात यह है कि जो आपके गुरु ने बोले थे ना, जो रस उस ज्ञान में था वो आपने इतना बसा नहीं नजर आता जो उनमें था। तब सुनने वाली बात है कि कभी तासा ने क्या कहा पुत्र ने, उन्होंने कहा बादशाह सलामत मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गा रहा हूँ और मेरे जो गुरु है वो सारी दुनिया के सच्चे पातशाह के लिए गा रहे। मतलब उनके उनके जो गुरु थे उनके गाने में इतनी डिग्निटी थी, इतनी डिग्निटी थी क्योंकि वो हर वक्त प्रभु के पैर में लौट रहते थे। तो भाव में भरे हुए थे उनके जो मन के अंदर, वो मतलब प्रभु के पैर में खो करके, प्रभु के पैर में लौट होकर के वो इतना अंदर से उस चीज को गाते थे। जैसे मीरा के लिए कहते हैं कि मीरा जब गाती थी तो एक दिन मस्तानी हो जाती थी, कहते एक दिन जैसे कि पागल जैसे होते हैं ना लोग, ऐसे कहते थे मीरा तो बिल्कुल ही उस प्रभु के प्रेम में जैसे कि पागल हो गए हैं, इतने मस्तानी हो गए हैं। बस खान थे कभी वो कितना अच्छा प्रभु प्यार में गाते थे, जब वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखते थे वही बस ऐसे बड़ा प्यारा प्यारा रास करने लग जाते थे। उस प्रभु प्यार में लीन होकर के, उस प्रभु प्यार में खो करके, उसके साथ अपने संबंध जोड़ करके, उन भावों को भर करके अपने कला के अंदर जिस भी क्षेत्र में जिस भी कला में हम एक्सप्रेस करते हैं तो आप देखिए वो सोने में सुहागा हो जाता है। उस कला का एक अपना अंदाज होता है और अपने लिए एक रूप होता है। तो इसलिए कहा कि राज्य मेडिटेशन को जब हम अपने कला के अंदर जोड़ देते हैं तो इतना उसमें बहुत सुंदर निखार और बहुत सुंदर दिव्यता आती है और वो इंप्रेसिव कला जैसे कि ऑटोमेटिक कला बन जाती है। तो इसलिए पहला बात तो यह है। दूसरा हमने बताया कि राज्य मेडिटेशन से हर कलाकार एक दिन आज की घोर कला में जो दुनिया है जहाँ की हर मनुष्य चाहे वो कलाकार है किसी में कोई भी फील्ड में है, हर कोई मनो बोझ अपने मन पर लिया हुआ घूम रहा है। तो राज्य मेडिटेशन से स्ट्रेस फ्री लाइफ हम सीख जाते हैं जीवन और फिर बहुत सुंदर कला हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, बहुत उलझन बहुत समस्या मेरे मन को घेरा हुआ है, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे मन का सुकून और मन की शांति चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा मेडिसिन बताओ या ऐसे कोई चीज बताओ। तो वो डॉक्टर जो थे उसने कहा कि सामने आप देख रहे हैं यहाँ कितना विशाल टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर सर्कस हो रही है और उस सर्कस के अंदर एक जोकर है जो इतने सुंदर कर्तव्य दिखाता है कि हर कोई बहुत हंसता है, बहुत खुश हो जाता है। हाँ, जिसको हंसी कई कई महीने हो गए पाओ उसको भी हंसी आ जाती है उसकी कला के ऊपर। तो आप वहां पर जाओ, आप उसका जो भी है वो देखो, वहां पर जाकर के उसके शो को आप देखो। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ बोले डॉक्टर कि आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या बताया डॉक्टर को, कहते हैं मैं ही तो वो जोकर हूँ जो सर्कस में अपनी कला पेश करता हूँ। तो देखिए कि वो और इतने लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, अपनी कला प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की लाइफ जो है देखिए कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ तो आप आए हैं तीन दिन का आप राज्य मेडिटेशन यहाँ पर सीख रहे हैं, परंतु वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जब तक हमको जीना है तब तक हमें इस राज्य मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास करते रहना है। वह जरूरी है कि जैसे रोज भोजन खाना जरूरी है, रोज स्नान करना जरूरी है, इसी तरह से हम मन की खुराक है राज्य मेडिटेशन, सकारात्मक चिंतन हमारे मन बुद्धि की डाइट है जो हमको प्रतिदिन लेनी है। और इस डाइट से हम सशक्त बनते हैं, इस डाइट से हम बलवान बनते हैं, स्ट्रेस से बनते हैं। तो इसलिए कहा कि राज्य मेडिटेशन जहाँ जहाँ जिस भी केंद्र से आप आए हैं वहां जाकर के भी प्रतिदिन आपको यह सीखना है। और उसके लिए सात बोलते राज्य मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, बेसिक नॉलेज के लिए सात दिन का कोर्स कराया जाता है। यह आपको थोड़ा समय है आपके पास, इसलिए डेली जो लेसन दिया जाता है एक सूक्ष्म में थोड़ा, लेकिन वहां जाकर के आपको इस बातें विस्तार पूर्वक सात दिन बताई जाती है और आप बहुत और अच्छे से ये समझ पाते हैं कि क्या है राज्य मेडिटेशन, क्या हमारे लाइफ में यह जरूरी है, इसका महत्व आप समझ पाएंगे। तो प्रतिदिन आप इसको सीख जाएंगे। हमारे संस्था के जो पूर्व मुख्य प्रशासिका हमारे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी थे, 2007 में उन्होंने अपनी बॉडी का त्याग किया और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। वो हमेशा कहा करते थे कि एक आना है, पांच खोटे सिक्के और एक आना, ये यहाँ पर देकर जाना, ये यहाँ की फीस है। इसका मतलब क्या, पांच खोटे सिक्के कौन से होते हैं, कौन से पांच विकार, कौन से पांच विकार हैं, काम क्रोध मोह मोह और अशुद्ध अहंकार, ये यहाँ पर छोड़कर जाना है। और एक आना का मतलब क्या है, प्रतिदिन एक बार सेंटर पर जरूर आना, मतलब जहां जहां से भी आप आए हैं तो प्रतिदिन वहां पर एक बार दिन में आपको आना है, वहां का क्लास करना है, ज्ञान योग सीखना है। तो उससे क्या होगा, डेली आपकी माइंड की चार्जिंग होती जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आप कभी नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है, मोबाइल को कैसे चार्ज करूं, मैं तो सारा दिन इधर से उधर घूम रहा हूं। नहीं, किसी भी कॉस्ट पे किसी भी हालत में वो 15-20 मिनट आप उसको चार्जिंग में लगाते हैं और पूरा दिन आप उसको फिर यूज करते हैं एकदम निश्चिंत होकर के, है ना। तो इसी तरह से ये जो बैटरी है इसको भी चार्ज करने की जरूरत है। इसको भी प्रतिदिन अगर आप सुबह आधा घंटा भी सेंटर पर जाकर के चार्ज कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका कितना सुंदर, कितना रिलैक्सफुल, कोई भी आपके जीवन में निर्णय करने की बातें आए, कोई परखने की चीज आए या कोई सहन करने की बात आए, है ना, तो इस प्रकार की सारी चीजें जो है समझो आपके पास होती है। उस युद्ध क्षेत्र के अंदर सारे शस्त्रों से आप सुसज्जित हैं, कौन से, ज्ञान और योग के, ज्ञान ध्यान के, शक्तियों के, बलों के, सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आप अगर फील्ड में जाते हैं तो आप विजयी हैं, आप सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए जो आज का विषय है कि राज्यों के द्वारा हम जिस भी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में तो उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ नाम फेम पाना ही सक्सेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि खुद औरों के लिए सैंपल और एग्जाम्पल बनना और लोग हमारी कला को किस तरीके से याद करें, वो सबसे प्रमुख बात है। कि एक है कि कोई कहे कि यह हिसाते बहुत है, ये लेकिन उसने देखने की ना हो, उसमें इन्हीं बातें भरी हुई हूँ जिसके देखने वाले दूसरों का करेक्टर जो है उस पर बैड इफेक्ट पड़े, वो कोई मैं तो मानती नहीं कि उस तरह की कोई सक्सेस है। सक्सेस वो है जिससे औरों की लाइफ चेंज हो, वो ऐसे एक उदाहरण मूल कदम बने और उस तरह से समाज जो है वो आपको एक अच्छे भाव से देखे कि इनकी जो कला है कितनी सकारात्मक और कितनी अच्छी है, कितनी डिवाइन है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं दूसरे प्रकार का भी बहुत ज्यादा, जैसे कि परमिश रही है कला मनोरंजन के नाम पे, मनो काला अंजन जो है वो लोगों के जो है आंखों पर पोता जा रहा है एक प्रकार से, तो वो ना हो। हमारी कला से और उनके जीवन में सुख और शांति आई, शक्ति आई और एकता बढ़े, परिवारों में एकता बढ़े, बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट बढ़े, छोटों के प्रति प्यार बढ़े, कुछ ऐसी कला हम दूसरों के सामने परोसे। तो आप सभी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद। और शांति
में रखा, आपने मूल रूप से यह बताया कि वर्तमान समय में कलाकारों के जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स रहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कुछ डिसीजन पावर का अभाव या रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कई बार कुछ न कुछ वीकनेसेस आती है, विल पावर में कमी आती है, आगे आगे बातों पर कहा। और फिर बाद में ये कहा कि आपने भी राजयोग ये ऐसे है जो हमारे मन को रिफाइन कर देता है, हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन विल पावर इन सबको फिर से जागृत करता है। आपने बहुत ही सुंदर जो एक उदाहरण दिया, कौन सा बीरबल है, कविता सिंह बीरबल का, इसमें क्या बताया, क्या प्रेरणा देता है हमको, बताएंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। राइट, और भी बताते जाइए। हर कोई अपना अपना छोटा छोटा बताते जाइए। सबसे पहले यही थॉट निकलना चाहिए, मेरा निकलता है लेकिन ये निकलना चाहिए कि बाबा इन सबका भला हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आप दे रहे हैं और अगर हम इसके बदले में अगर हमारी उनके थोड़ी बहुत ये आप समझ रहे हैं, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तो फिर रिटर्न में क्या होगा। तो बड़े ही संभव के और बड़े ही अच्छी तरह से समझदारी से हमको हमारी कला को लोगों तक पहुंचाना है, प्रस्तुत करना है और उसमें हमारे मन के भाव यह हो कि सबका भला हो। ठीक है, तो ये आज दीदी ने हमको बहुत अच्छी एक जोकर का भी जो हमको उन्होंने बताया, ये भी इसमें भी बहुत सारी बातें मैं समय के हिसाब से रहूंगा तो ये प्रेरणा वाली बात कही। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, आगे की चेयर्स थोड़ी खाली है, थोड़ा आगे आके कुछ बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेंगे, आगे की चेयर्स खाली हैं, भाई साहब आप भी आएंगे? सुंदर वातावरण में है, आप सबको अच्छा तो लग ही रहा होगा, खाना तो बस संपन्न हो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है, हाँ जी आवाज तो कहां आ रहा है, क्योंकि 100 के आसपास में लोग हैं तो आवाज भी उतना होना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो रहे हैं, आप लोग सब सेशन अटेंड कर रहे हैं, खास करके जो राजयोग थे, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये विषय जो है राजयोग द्वारा प्रेरणा सफलता, ठीक है, तो आप लोग कुछ अपना कहना चाहेंगे इन शॉर्ट में कि ये जो है हमने जो 2-3 दिन सुना इसमें से मुझे ऐसा लगता है, सुना है तो शॉर्ट में सुना अच्छी तरह से।
शांति राजयोग द्वारा कला, तो इसमें एक मेरे जो विचार मंथन है वो प्रस्तुत करूंगी कि एक स्पीकर बनना वो भी कला है, कि कोई भी राजकीय फंक्शन हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी, तो इसमें स्पीकर बनना मेरा एक अनुभव है। मैं स्कूल में टीचर थी और मेरा अनुभव है कि जब हम राजयोग में आए थे तो स्क्रिप्ट दो तीन बार बोलने के लेक्चर देने के लेक्चर जो अकेला हाव भाव की बिना बोलता है तो वो लेक्चर हो जाता है, लेकिन हाव भाव के साथ बोलते हैं तो उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरे को पहले तो ये आया कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, जो खड़ी होती मेरे में से बाबा जो बोले वो बोल जाती थी, तो सही बात क्या था। और हाव भाव के साथ इसलिए कि जब हम टीचरों को टाइम देते थे, ज्यादा समय नहीं मिले, तो बोलते थे कि बड़े पौधे, हाव भाव क्या रखते थे, बड़े पौधे, तो जब बड़े क्यों थे, बड़े पौधे हर गाँव है ना, तो राजयोग के द्वारा मेरा स्पीच देना, मेरे ट्रेनिंग सेंटर में प्रोग्राम देना बहुत इजी हो गया। स्क्रिप्ट में बार बार पढ़ना नहीं पड़ता था और मैं इतना अच्छे से प्रस्तुत कर सकती थी कि बाबा का शुक्रिया शुक्रिया।
और कुछ कोई रखना चाहेंगे अपने दो शब्द, रिटर्क करेंगे, कल का आपने किया है रिटर्क करें, जो आपने 3 दिन में सुना उसको थोड़ा आप शॉर्ट में हम सब तो करके
ओम शांति। मेरा नाम हर्षद पंचाल है, मैं अहमदाबाद से हूं और प्रोफेशनली मैं शिल्पकार हूँ, और मैं वैसे मेरा माध्यम है शिल्पकार गुड़ में, मैं गुड़ में शिल्प बनाता हूँ। तो मैं यहाँ 2-3 दिन से यहाँ शिविर सब अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है और वातावरण भी बहुत अच्छा है। अभी दीदी ने जय सुना कि हम राजाओं को खुश करने के लिए तो बहुत काम किए, बराबर, तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि नेक्स्ट में जब भी मुझे चांस मिले तो भगवान के घर पे आके और जो भी मुझे वैसे याद पे दे गए जो भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में मुझे एक अच्छा सा लकड़ी में एक सेट बनाने की मेरी तमन्ना है। ओम शांति।
बोलेंगे तो करेंगे आप कुछ, बोलेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते।
कौन सा है मैं कंसेप्चुअल आर्टिस्ट हूँ,
तो मेरा एक जरूरत ये रहता है कि अगर मैं छोटे से छोटा लोगो बनाता हूँ या फिर 500 फुट का स्टेज डिजाइन करता हूँ, तो वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ डेकोरेशन ना रहे, उसमें कुछ ऐसी चीजें एडिशनल हो जो लोगों के लिए एक मैसेज हो। तो ये सारी चीजों के लिए शायद जितना ऑनलाइन होगा उतना ज्यादा डिलीवर कर पाऊंगा, और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक आर्टिस्ट की दृष्टि से देखते हैं तो वो जो गुरु मंत्र है या जो भी राजयोग का एक उसको अगर हम बोल सकते हैं कि वो पारस मणि जैसी चीज है, दुनिया ने तो हमें एज अ डायमंड तराशा है, लेकिन उसका अगर पारस मणि से टच हो जाए तो बात कुछ और होती है। थैंक यू।
सभी थे गुड, उनको सीखना मिला होगा आपको, है तनाव गुस्सा है चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया सबको, है कुछ दिखा रहा है अपना अपना कुछ हो कि नहीं, कि कितना समय रहते हैं आप, है दिखा रहा है अपना कुछ दिखा भी नहीं।
झूठ बोले आपको पता है, वो पता है
पता है, हर चीज पता है, लेकिन हमें उसके प्रति ध्यान ध्यान रख के और जितने हो सकते हैं उनको बोलता है बीच में समझ आ रहे हैं आपको, नेगोशिएट करके उसको खत्म करना है। क्यों मैं आप लोगों को इसके लिए बोल रहा हूं, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल। कई बार होती है बातें, ठीक है। एक्चुअली वो इज नॉट मैटर, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं वो मैटर करता है। इस बात को आप पक्का कर लो, आई थिंक शनिवार को भी सुनता है इस बात पॉइंट के ऊपर। वो पर्सन के साथ आ रही है, क्राइस्ट के साथ आ रही है, यानी दुनिया के साथ आ रही है, ऐसा समझ रहे हैं। तो उसमें क्या है, एनर्जी नहीं है, तो हमको भी थोड़ा हम सोच रहे हैं हम सब बारह के बच्चों का कि धन तो आपके पीछे आएगा। जब हम आपका शुक्र से जुड़े होंगे तो धन आपके पीछे आएगा। लेकिन आपने कोई भी प्रोफेशन करो, कई लोगों में कम भी लेना पड़ता है। हमने देखा है हमारे प्रोफेशन में, इवन भीमा कॉलेज की सेवाओं में, वो जिससे हम डेन तो नहीं बोलेंगे, जो भी सेवा की है वो हमको किस न किस रूप से किसी के द्वारा हमको सहयोगी बनता है, और उससे वो ज्यादा ही हमको सहयोगी बनता है। तो आप जो भी डिलीवर करते हैं प्रोफेशन में, उसमें थोड़ा दिल थोड़ा क्या रखो अपना, हाँ बड़ा हमको रखो, फ्लाक दिल रखो, थोड़ा बड़ा दिल रखो। तो क्या होगा, आपका फ्लाक दिल बड़ा दिल, मैंने कहने को यहां पर आपको ये शुरू कर रही है, और आपके कल में निखार आए हैं। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंटरेक्शन भी होए, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, कुछ कुछ अगर आपको ऐसा किसी को कुछ एक आध पॉइंट आपको बोलने हैं तो आ सकते हैं। आएंगे माताओं में से कोई, क्या है आप, ठीक है, ठीक है। हम कार्यक्रम के अगले पढ़ाई की ओर चलते हैं। अगले हमारे बीच में हमारे आने पर अल्पा दीदी आ रही है, उनको मैं निमंत्रण देता हूँ। आप टैगोर पार्क गोल में है, वहां से आप अपनी सेवा दे रहे हैं, सेवा केंद्र के माध्यम से, और पिछले 38 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरी सेवा समर्पित किया है, और आप कला और संस्कृति विभाग में सक्रिय रूप से लगभग 30 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार और कुछ क्रिएटिव बातें हम सबके बीच में रखें। अल्पा दीदी
आज के इस कार्यशाला वर्कशॉप के कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, और कार्यशाला में हम कुछ जिस विषय को लेकर के हम इस कार्य को कर रहे हैं, राजयोग द्वारा कला में सफलता, इस विषय को लेकर हम सब आपस में इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। हम केवल लेक्चर में सुन रहे हैं, और इसीलिए जैसे भाई बीच बीच में बता रहे थे कि आप सबको भी अपने कुछ विचार देने हैं, आप सब भी अपने कुछ बातें अपने बता सकते हैं कि आपके भी मन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, कई प्रकार की बातें आप अपनी देकर के एक दूसरे के लिए लाभ देने वाले बन सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं सभी को। तो इसी प्रकार की बातों को हम सब में मिलकर के कि राजयोग का कुछ दिनों से, दो दिन से तो आप लोग भी कुछ बातें सुन भी रहे हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं, कुछ इस वातावरण में ही आप उस राजयोग की बातों का अनुभव करते जा रहे हैं। किस प्रकार से ये स्थान जो ईश्वर का बनाया हुआ स्थान है, जो अनेक राजयोगी भाई बहने यहाँ पर निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके भी साथ आपकी बातचीत होती होगी, मिलते रहते होंगे और साथ में उनको आप देख रहे हैं कि कैसे वे अपने कार्यों को करते हुए, कार्य तो साधारण ही हो रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को जिस प्रकार से सभी यहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं या सेवा करने के लिए आए हुए हैं, उन सभी के द्वारा सब व्यवस्था की जा रही है, कहीं किसी के बैठने की ठीक से व्यवस्था की जा रही है, कहीं कहीं स्टेज सजाए जा रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है, उस भोजन बनाने में भी कितनों का हाथ होगा, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटे का कार्य कर रहा है, तो कोई बना रहा है, कोई परोस रहा है, कोई उसको समेट रहा है, कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसको करने वाले सभी राजयोग के अभ्यास को करते हुए कर रहे हैं और उस राजयोग के अभ्यास के साथ भी उस कार्य को कर रहे हैं, तो आप सब उसको अनुभव कर पा रहे हैं कि उनके कार्य का आप सबको कितना सुंदर लाभ मिल रहा है और कैसे एक सुचारू रूप से सब कार्य होते हुए आप सब यहाँ का पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं। एक तरफ से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं भी हो रही है जो हॉल में बैठ करके आपके सामने अनेक प्रकार के चाहे सेशन हुए, राजयोग के सेशन हुए और कई लेक्चर्स हुए, जैसे कि आज डॉक्टर सचिन भाई का लेक्चर हुआ, ऐसे अनेक बातें आप सुनते जा रहे हैं। शाम के टाइम में आपने कल्चरल एक्टिविटी को देखा और उसमें अनेक प्रकार के कल्चरल आइटम्स को आपने देखा, तो वे वहाँ और प्रकार का हॉल में कार्य हो रहा है और पूरे कॉम्प्लेक्स में अपने अपने कार्यों से सब पूरे रीति से सब अपने अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं। आप बगीचा देख रहे हैं तो बगीचे को भी संवारने वाले, संभालने वाले, रेडी करने वाले, सुंदर बनाने वाले, उनके भी तो अपनी मेहनत है उसके पीछे, परंतु सबका कार्य ईश्वर का कार्य समझ के भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंदर में केवल एक भाव रख करके कर रहे हैं कि ये कार्य मेरा शो करें, मुझे सुंदर दिखाएं कि मैंने कितना सुंदर बगीचा बनाया, तो मुझे सब ढूंढे ये बगीचा किसने बनाया, भोजन बनाने वाला भोजन बना रहे हैं तो मुझे सब याद करें कि ये किसने बनाया, कितनी सुंदर आज कितनी टेस्टी चीज थी ये। किसी के मन में ये भाव नहीं रहता है, मेरा नाम हो, मेरा शो हो, मुझे कोई पहचाने, मेरी सबके सामने पहचान हो जाए, उस भाव को लेकर के यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा है। हर एक के अंदर में यही भाव है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, ये पूरा कार्य उसका है। और इसीलिए आप सब आने वाले भाई बहन, कोई भी आता है यहाँ पर, अनेक यहाँ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, कई सेमिनार्स होते रहते हैं, अनेक तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उठने अनेक लोग आते हैं और सबका बुद्धि का योग कहीं जाता है, सबको ध्यान किस तरफ जाता है कि ईश्वर का कार्य है। कोई यहाँ के व्यक्तियों को नहीं ढूंढ रहा होता है, ये किसने किया, ये किसने बनाया, ये क्या हुआ, नहीं, सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। सबका यहाँ कार्य करने वालों का एम ही यही रहता है कि हम सारे उनसे सबको जोड़ना है, उस ईश्वर की ओर सबका ध्यान खिंचवाना है और वही सब अनुभव भी कर रहे हैं। सबको अंदर में यही लगता है, महसूस होता है कि देखो यहाँ परमात्मा का कार्य कितना अच्छा, कितना इतना अच्छा चल रहा है, आप सब अपने अपने स्थान पर जाकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं निकलेगा ना। हम इस स्थान पर गए तो वहां पर ईश्वर का कार्य कितना अच्छे से चल रहा है। ब्रह्मकुमारीज माना है भगवान का स्थान, ब्रह्मकुमारीज में हम देवों का नाम नहीं आता है ना, नाम भले हमारा ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ये हमारे ऊपर टाइटल मिला हुआ है हमें, लेकिन एक संस्था है उसका नाम ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना। और जब आप किसी को सुनाएंगे तो आप संस्था के बारे में बताएंगे, किसी बहनों के बारे में भैया के बारे में तो नहीं बात बताएंगे कि भैया की ब्रह्मा कुमारी बहने ऐसे थी भाई ऐसे थे, नहीं। वहां का पूरी संस्था का कार्य कैसा था और वो संस्था में ना ईश्वर का कार्य उनका कार्य, और इसी कारण से यही एक भाव हमें सीखने की जरूरत है कि हम अपने कोई भी कार्य को करें क्या हम ये भाव और इस प्रकार का जीवन शैली हम अपने साधारण जो कार्य है अपनी कला का कार्य कहो अपना सांसारिक कार्य कहो जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं लौकिक कार्य, लौकिक कार्य में संसार के लिए संसार में रहते हुए हम अपने घर परिवार के लिए हम अपने लिए अपने फैमिली के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य को लौकिक कार्य कहा जाता है। तो ये तो कहलाता है ईश्वरीय कार्य जिसको हम अलौकिक कार्य कहते हैं, ये है अलौकिक कार्य ईश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो हम अपने सांसारिक घर परिवार के लौकिक कार्य को भी अलौकिक बना सकते हैं ना, उसको भी हम अलौकिक बना करके चलना सीखें। तो वही राजयोग माना परमात्मा को अर्पण करके करना सीख जाएंगे। राजयोग का मीनिंग जैसे दीदी ने बताया कि हमारा परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन। तो हम अपने लौकिक सांसारिक कार्यों को करें, चाहे घर में परिवार में हम घर को ही संभाल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, पारिवारिक कार्य कर रहे हैं, और फिर आप प्रोफेशनल अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, और सबको हम ये समझ के कर सकते हैं कि हम सबको इस संसार में ईश्वर ने भेजा है। सब जानते तो नहीं है, हम सब इस बात को स्वीकार भी करते हैं, है ना। ये विश्व को कहते हैं ये ईश्वर की रचना है, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान की रचना है, वह सब भी कौन है, उनके बच्चे हैं, उनकी क्रिएशन है हम। हम सब संसार में रहने वाला हर मनुष्य भी उस ईश्वर की रचना बोलते हैं हम उनको, इस प्रकार स्वीकार करते हैं। परंतु हमने केवल थोड़े समय के लिए उसको मुख से किसी से सुना है या कभी हमने खुद बोला है अपने बारे में कि हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। या हमारा जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, हमारे पास अभी जो कुछ भी है उनको हम कहते हैं भगवान का दिया हुआ है, कभी कभी हम बोल लेते हैं ऐसी बात, है ना। तो वो कभी कभी बोलते हो नहीं, या हमेशा जीवन के साथ हमें इस बात को जोड़ दें तो कि जो कुछ भी है हमारा वो सब उसका है और हम भी उसके हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहां अपना कार्य वो सब उसका दिया हुआ कार्य है, वो मुझे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करा रहा है, वो जैसे कराए वैसे करूंगा मैं, उनकी प्रेरणाओं से करूंगा, उनकी आज्ञाओं से करूं मैं ये कार्य, चाहे अपने छोटे छोटे कार्य करें, उस छोटे कार्य को भी एक बार ऐसा समझ के कि मैं उसके लिए कर रहा हूं, एक खाना बनाने के लिए भी मान लीजिए कि सब्जी बना रहे हैं, तो आज ऐसा समझ लो जैसे बात निकल रही थी आप सबने से ही सब सुना रहे थे कि जब वो भोजन वैसे नॉर्मली बनता है तो वो उसकी बात अलग हो जाती है, और जब वो ईश्वर के लिए बनता है, भोग कहलाता है, प्रसाद बन रहा होता है, तो उसकी भावना, उसका स्वाद, उसकी बातें अलग हो जाती है। तो हम वो प्रसाद किसी किसी दिन ही क्या बनाए, हम रोज ही क्या ना प्रसाद ही बनाए, हम जो रोज ही भोजन बनाए चाहे दिन में तीनों टाइम का अलग अलग बनाए, किसी भी समय कुछ भी बनाए, उसमें एक केवल कार्य शुरू करने के टाइम, हर कार्य शुरू करने के समय परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा से बात करते हुए कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप जैसा बनवाएंगे, आप जैसा करवाएंगे, ऐसा हम कर रहे हैं, आप साथ में रहना मेरे और आप मेरे साथ रह करके ये कार्य करवाते जाना। आप अपनी कोई भी रचना शुरू करते हैं, कोई भी कार्य अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो आपके कार्य हैं, विशेष करके ये भाइयों के प्रति भी मैं बता रही हूँ जिनका अपना प्रोफेशनल अलग अलग होगा, और उस कार्य को भी आप जब शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने के टाइम ईश्वर को अर्पण करके या ईश्वर से जैसे आज्ञा लेकर के हम करने शुरू करें कि परमात्मा आप जैसे बताएंगे, आप जैसे करवाएंगे, वैसे मैं करूं, है ना। कोई भी कार्य हम शुरू करें उसको हम ऐसे शुरू कर सकते हैं ना कि परमात्मा से बातचीत करते हुए और मन ही मन में उनको साथ रखते हुए उनकी आज्ञा लेकर के उनका कार्य है ऐसे समझते हुए और ऐसे हम कार्य को शुरू करें कि परमात्मा आप जैसा कराएंगे आप मेरे द्वारा कार्य करवाइए और मैं इस कार्य को करने के लिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ। वैसे भी कभी कभी हम बोलते हैं कि वो तो सब कठपुतलियां हैं और हमको वो ऊपर से नचा रहा है, चला रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम प्रैक्टिकल में वो कठपुतली बनकर के जीवन जिए, पूरा एक दो बार बोलते हुए ना करें, लेकिन हम सुबह से उठ रहे हैं, कर रहे हैं, अपना खुद के शरीर का भी कार्य कर रहे हैं, तो जैसे वो करा रहा है हम उनकी कठपुतलियां हैं और हमसे वो करवा रहा है। ऐसे कोई भी छोटे छोटे कार्य और बड़े से बड़ा कार्य, सारे कार्य, जीवन के सभी प्रकार के कार्य उसको सौंपते हुए और उसके द्वारा करवा रहे हैं ऐसा समझते हुए करेंगे तो कितनी सफलता मिलने हो जाएगी, वो कितना हमारा ध्यान भी रखेगा ना, क्योंकि अब जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, हम तो उनके कठपुतलियां हो जाती है, तो हाथ में डोर तो उसके हो गई ना, और जब हम उसके हाथ में डोर दे देंगे अर्पण करेंगे अपने मन की पार, अर्पण करेंगे अपने जीवन, उस जीवन को अर्पण करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम संसार से निवृत्त हो जाएंगे, जीवन को अर्पण करने का मतलब सन्यासी बन जाना नहीं है। हम हर कर्म में, हर अपने सांसारिक कार्यों में उसके द्वारा चल रहे हैं, उसके द्वारा कर्म कर रहे हैं, वो करा रहा है, ऐसे करते हुए जब चल रहे हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है, और जब वो कराएगा तो उसके कार्य में कभी कमी हो सकती है क्या? वो जब कार्य हमारे द्वारा करवाएगा तो कितना परफेक्शन वाला वो कार्य होगा, उस कर्म में परफेक्शन कितनी आ जाएगी, उस कार्य की जब परफेक्शन देख करके अन्य भी वह वाह करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे एक बात और जोड़नी है इसके साथ, कभी कभी क्या होता है, वो हमारी रचना, हमने कुछ बनाया, हमने कुछ क्रिएट किया, हमने कोई चीज इस तरीके से रेडी की, और फिर जब उसका दूसरों को पसंद आया तो हम उसको मैंने बनाया का स्वीकार कर लेते हैं, मैं तो मानने लग जाते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा बनाया, सबको बहुत पसंद आया, देखो ये वाली पेंटिंग मैंने बनाई, ये वाला फलाना कार्य मैंने किया, ये रचना मेरी है, ये देखो मैंने डेकोरेट किया है, मैंने इसमें कितनी मेहनत की है, फिर मैंने आ जाता है ना, पहले करने के टाइम शुरू करने के समय भी उसका समझ के शुरू करेंगे और लास्ट में पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया, औरों को पसंद आया, सबने खूब सराहा, उसके बाद भी ये हमें उसको अर्पण करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया, उसने करवाया, उसने इसे बनवाया, उसके उसको अंदर अंदर अर्पण करते चाहिए, वो अंदर वाहवा करेंगे ठीक है, लेकिन हम अंदर से उस ईश्वर को याद करते रहेंगे कि ये ईश्वर तूने करा दिया इतना सुंदर, जो लोगों को बहुत पसंद हो गया, ये ईश्वर बहुत बड़ा तो तुम्हारी है, हम तो बीच में केवल योगदान बन गए हैं, तो उस प्रकार का भाव रखना, ये भी परमात्मा से हमारी बुद्धि जुड़ी, फिर से पहले शुरू करने के टाइम भी जोड़ना है, करते करते भी जोड़ना है कि सारा टाइम हम जो कार्य कर रहे हैं तू करा रहा है, तू जैसे बता रहा है वैसे मैं करता जा, तो पूरा कार्य करने के टाइम भी हम उनसे अपनी बुद्धि जोड़े रखें, या उनको अर्पण करते रहे, या उनसे राय लेते रहे, आज्ञा लेते रहे, और लास्ट में सफलता मिल गई उसका श्रेय भी अपने ऊपर नहीं लेना है, उस अहंकार में आ जाएंगे तो फिर छोटा सा कहते हैं ना कि गड़बड़ हो जाएगी, इतना सुंदर हमने क्रिएशन तैयार किया और उसके बाद उसका अहंकार का भाव मैंने ले लिया तो उसमें खराबी आ जाएगी, तो वहां पर भी हम उस ईश्वर को अर्पण करें, उसने कराया, उसके साथ लेकर के मैंने किया है और इसीलिए उसमें कितना सफलता मिली है, तो सफलता तो उसको अर्पण तुमने करा दिया, थैंक्स बाबा, शुक्रिया ईश्वर आपका, उनका धन्यवाद हर कार्य में करते करते हम उनको सौंपते चले जाए, हमारी वाहवा करेगी तो हम उनका शुक्रिया करते हुए अंदर अंदर हमें करना है, तो यही जो हमारा मन टोटल शुरू से लेकर अंत तक कर्म करने में, साधारण कर्म करने में या बड़े बड़े कर्म करने में, अपने कोई भी क्रिएशन को रेडी करने में, हम कुछ भी कार्य करने में, हम सारा समय उनसे जुड़े रहेंगे, शुरू से अंत तक भी हम जुड़े रहेंगे, यही है परमात्मा में मन लगा के कर्म करना, परमात्मा में मन और बुद्धि जुड़ी हुई है और हमारा कर्म हो रहा है तो ये राजयोग ही है, यही राजयोग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ गया है, यही राजयोग हमारे जीवन के साथ हमने समा लिया है, हमने अपने जीवन में ऐसे कहा जाएगा, इसमें कुछ मतलब बड़ी मेहनत का काम थोड़ी है, बहुत बड़ी साधनाएं थोड़ी करनी है, उस प्रकार की विधि को करने में हमें कोई बहुत समय थोड़ी देना है, कोई पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, तो ये राजयोग का अभ्यास ऐसा अभ्यास है, हम अपनी डेली लाइफ के साथ हम जोड़ सकते हैं, और डेली लाइफ में हम सुबह से लेकर रात तक हम अपने साथ परमात्मा को साथ लेकर के कर सकते हैं, तो बस जीवन बन गया हमारा, राजयोग जीवन है हमारा, अलग से लेवल लेकर के चलने की बात नहीं है, जीवन में समाया हुआ है राजयोगी, राजयोग हमारे लिए वही परमात्मा चाहते हैं। वही ये विद्यालय सिखा रहा है और इसी प्रकार की बातों को हम भूल ना जाए करना, जो भी हम थोड़ा सा विधि बता रहे हैं उस विधि को करने हम भूल ना जाए, उसके लिए हमारे सेवा स्थान बने होते हैं, तो वहां डेली हम थोड़ा सा कनेक्शन में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम वहां की बातों को सुनते रहते हैं, तो हमें याद रहता है कि नहीं मुझे हर कार्य में ईश्वर को मुझे साथ रखना है। नहीं तो यहां से सुना अच्छा तो लगा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुनाया, वाह वाह करते रहेंगे, बाहर जाके दो चार को सुना देंगे, बहुत अच्छा है हमारा कॉन्फ्रेंस रहा, हमने बहुत मजा किया वहां पे, बड़ी अच्छी बातें सुनाते थे, थोड़ी सी बातों की सराहना कर देंगे वहां, उसके बाद फिर हम जैसे थे वैसे बन जाएंगे, तेरा मेरा मेरा तेरा मैं, फिर वही हो जाती है ना बातें, क्योंकि थोड़ा टाइम ये बातें याद नहीं रहेगी जब तक हम उसको कनेक्शन में हम खुद नहीं लेते रहेंगे, हम जोड़ते नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हमारा कहना यही रहता है, हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के हर सेशन में ये बात बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे सेवा केंद्र पर थोड़ा समय निकाल के आप जाया करो, उसका मूल कारण और कुछ नहीं है, राजयोगी लाइफ बनाने में कोई हमें वहां जाकर के कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि सेवा केंद्र पर जाएंगे वहां राजयोगी का एक हमें कोई टाइटल मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट मिले, ऐसी बात नहीं है, हमें यही तो करना है, बाहर यही बातें थोड़ा थोड़ा याद दिलाई जाती है कि हमें हर कार्य परमात्मा की याद में करना है, और वो याद बने रहे उस कार्य को हम सभा करते रहे तो कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई प्रकार का और चेंज लाना ही नहीं, केवल मन की स्थिति का ही तो परिवर्तन है, विचारों का ही तो परिवर्तन करना है, जो मैं कर रहा हूं मुझे बनाना है, ये मुझे ये करना है, कभी कभी टेंशन हो जाती है उसको करने की, बनाने के टाइम अरे क्या करूं, ये तो बहुत अच्छा बनाना चाहता था चाहती थी और इसको बनाने में मुझे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मुझे तो उसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तो मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो टेंशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैं अपने ऊपर लेकर के सारा बोझ अपने सिर पे लेकर के घूम रहे हैं, सारा मैं करते रहते हैं, मुझे करना है तो अपने सिर पे सारा काम ले रखा है, तो उससे बोझल हो जाते हैं, फिर टेंशन परेशानी, फिर उसके कारण हम दूसरों के साथ भी व्यवहार में कभी इरिटेट हो जाना, गुस्से में आ जाना, वो सब हमारा स्वभाव संस्कार बनता चला जाता है, और ऐसे ही जब कार्य पूरा होने के बाद हमने जब कभी अभिमान का रूप ले लिया, मैंने देखो कितना अच्छा बनाया, मैंने देखो कितनी अच्छी जगह, इस प्रकार से मेरी तो कोई परवाह तो करे, मेरे को कोई पूछे तो सही, मेरे को इसका इतना तो बोलना चाहिए, तो ये चीज जो है हम अहंकार के भाव में आ जाते हैं, हम सांसारिक बन जाते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं मेरी रचना हो ना, मेरे बच्चे हो ना, मेरे मन करके ही कार्य शुरू करो, मुझे साथ में रख के कार्य करते चलो और अंत में भी मुझे ही अर्पण करके उस कार्य की सराहना आप ही लेते रहो, दुनिया के सामने आप ही लेते रहो, भगवानी आपको ही मिलेगी, लेकिन आपको मन ही मन उसको अर्पण करना है, मैंपन के भाव में आना नहीं है बस, तो यह है जीवन जीने का सही तरीका, यह है राजयोग को अपने जीवन में लाना, यह है उसमें सफल होने की विधि, हमें इस प्रकार से अपने जीवन को कार्य में लगाना है, राजयोग को साथ में जोड़ करके चलना है। ओम शांति।
कर्ता उनके भाव से मुक्त, ठीक है, यदि कर्म करने वाले कर्ता उनके भाव से मुक्त होकर समर्पण भाव से करना है, आप लोग तो आप लोग बहुत सारे सवाल बहुत सारे लिखे, क्यों लोग अपनी संस्था कर रहे हो, योज करो। ये स्वयं दोष आपको बहुत कुछ करेंगे। एक जो स्वयं दोष का आप देखे हैं, वह स्वयं दोष आपके लिए बने हुए हैं।
कुछ है
से कर रहे हैं,
क्योंकि इसके लिए
शरीर हमारा है, लेकिन उसके लिए कोई छूटा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा हल्का हल्का अभी इसको क्लॉकवाइज करेंगे। पहले हल्का हल्का करना, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम वो नहीं करेगा, हल्का हल्का करेगा एकदम लाइट। अब अभी उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ओके, तो हल्के हो गए सब लोग।
इसको थोड़ा कुछ करना है तो कर सकते हैं, ऐसा खड़े होकर भी करना है तो थोड़ा कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा एक्टिव करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी दीदी हमको
योग करेंगे, मेडिटेशन, ठीक है? तो थोड़ा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से आप चाहेंगे डेढ़ घंटे होने को आ रहा, आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा जगह बड़ी अपने हिसाब से उनको थोड़ा खड़ा रहेंगे, तो बहुत थोड़ा खड़ा हो जाइए, अभी बैठ जाइए, ठीक? पांच मिनट का, पांच सात मिनट का आपको मेडिटेशन कराएंगे, जो आपको काफी एक क्रिएटिव आपको मेडिटेशन आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है? तो प्रेम दीदी से अनुरोध करते हैं कि आप हमें योग का थोड़ा अभ्यास करें और अपने जीवन में सफलता को हम कैसे प्राप्त करें, स्वराज्यों के माध्यम से, इसके माध्यम से हमको थोड़ा अवगत करें। दीदी प्रेम दीदी
कला में सफलता का एक नंबर आज, क्योंकि हम सफल हो दो सरोवर में चारों ओर देखते हुए चलते हुए अनुभव कर रहे हैं। हर कार्य जो है कला के रूप में अवसर आ रहे हैं, हर चीज हर अवस्था में हरा बतात्मक ध्यान नजर आ रहा है, परफेक्शन नजर आ रही है। किसी भी चीज को देखकर हम यह नहीं कह सकते हम ज्यादा नहीं नया होना चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित है, बहुत सुंदर है। जैसे कि आरोप सत्यज बनने को एक सुंदर मैदान हरा रहे देखने को मिल रहा है, घर करने को मिल रहा है और साथ राज योग के दान है। राजयोगी आत्मा का मन पर बंधा आत्म सच साफ धर्म और बाल होने के कारण जो कर्म जैसा होना चाहिए ठीक 100% वैसा ही हो रहा है। राजयोग में हम अपने मन को अपने बुद्धि को उस प्रभुपति परमात्मा उस परम कलाकार के आगे सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं और करम करम हो बनाकर हमसे सब कार्यों को रहते हरा चलाते हैं कार्यों में सफल के देते हर कार्य उसके पास टैलेंट है हमें लाज करते हैं। कर्म भागे बनकर परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर अपने संप्रदान बनाकर सब हम कोई भी कार्य करते हैं बखार पते हैं उतारो सदा सफल पता है। हर कार्य में परमात्मा पते के याद होने से उनके दयाओं को उनके शत्रुओं को उनके लबब का हर समय हर आत्मा और सांस करते हैं अनुभव करते हैं। पिता के साथ जुड़कर हमारे एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, एकाग्रता पूरा किया गया कोई भी कार्य जिसमें हमारा मन विकृत न हो उधर उधर भटकते न हो फुल कॉन्सेंट्रेशन से किया हुआ कार्य अवश्य सफलता को प्राप्त होता है। हर कार्य करते हुए भी वैसे पदों का याद करते हैं और महसूस करते हैं, हर वक्त महसूस करने तो परमात्मा पिता से जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रेम का साधन है, बाला का सागर है, ऐसे उतरते हुए वो शक्तियों के तिरंगे हमारे ऊपर आ रहे हैं। वो शक्तियों के जैसे कि कवच हमने धारण कर लिया है, जब हम कार्य करते हैं तो कार्य भी हमेशा सफल होते हैं। तो हम सभी जीवन में सफल पर्याप्त बनने के लिए हर कार्य के कार्य के रूप में फिर करने के लिए उस परम कलाकार सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ अपने मन को अपने बच्चों को जोड़ करके रखें और महसूस करें कि परमात्मा और शक्तियों के केंद्र जीवन में करते हुए हम सदा सक्सेसफुल होते नहीं, कुछ एक दो लोगों को मैं सुनना चाहूंगी आज के विषय के अनुरूप कुछ रजूआत, कुछ प्रेजेंटेशन पहले मैं सुनना चाहूंगी। ये इतना आ रहा है, अब हम अपने घर में तो बैठे हुए हैं और इसके बाद तो मेडिटेशन का ही सेशन की
मेडिटेशन करा दिया, अभी तो उनको भोजन करके 8 से 10 का जो कल्चर
है अभी फ्री है, अभी
आप सबके सवाल पे है। तो मैं चाहूंगा आप में से जैसे कि आप जैसे वैसे तो थोड़ा इंटरेक्शन हुआ है क्योंकि ये थोड़ा हमारा वो हस्त के द्वारा जो कार्य करने वाले हैं वो तो उन लोगों का ये ग्रुप है, उसमें सब माताएं हैं, पाक कला आदि वगैरह सब है। तो ऐसा आप आएंगे आप अपना थोड़ा अनुभव साझा करें, अपना परिचय भी देंगे।
से आया हूँ, मैं पेंटिंग्स और स्कल्पचर कंसेप्चुअल काम करता हूँ। शायद हमारे कलाकारों की एक दिक्कत रहती है कि हम लोग काम करते रहते हैं, वो शब्दों के साथ लेन देन थोड़ी कम रहती है, इसलिए बोलना संकुचित लगता है थोड़ा। जैसे अभी जो चर्चा हुआ उसके हिसाब से मैं बोल रहा, जो मेरे समझ में आई है बात, कि बहुत सारे जगह पे हम ये कर रहे हैं या ये नहीं करना है, इस चीज को दिखाया जाता है, समझाया जाता है बहुत तरीके से, लेकिन ये दो डायरेक्शन के बीच का जो गैप है, शायद हम कलाकार उसी में कहीं अटक जाते हैं। तो जो ये करना है और ये नहीं करना है के बीच में जो कनेक्शन बनाना है, वो कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है, उसका मेरी जो समझ में आया है वो चीज एकदम स्पष्ट है कि राजयोग के अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और एक चीज,
ये आपकी फीलिंग हम चित्र में दिखाएंगे
जी, मैं चित्र में बना सकता हूँ ये चीज,
हम चित्र में देखेंगे।
नेक्स्ट जो आएगा अभी, अभी प्रोग्राम आ रहा है ना अक्टूबर सितंबर में, हमारा ग्लोबल, जी जी
ग्लोबल सप्ताह अक्टूबर में,
हाँ
4th अक्टूबर में है,
मुझे डेट पता नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ आने वाला है तो हम जरूर आएंगे और कुछ दिखाएंगे।
मुझे वहां आने की बहुत ज्यादा इच्छा इसलिए थी कि जब मैं पायलट रूप में गई, जो स्टेज आर्टिस्ट थे उन्हें एक दो के अनुभव को सुनने से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं उन्होंने सुनाया, उसमें एक ग्रुप 7 लोगों का आया है, वो जो स्टेज आर्टिस्ट थे, अपनी पूरी टीम, तो वहां हम लोगों को छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर फिर बोलना बंद कर देते हैं, डिस्टेंस हो जाता है। यहां होने से हमें ये महसूस हुआ कि कुछ भी हो जाए गुस्सा तो हमें ही नहीं चाहिए, तो हमने मिल करके डिसाइड किया कि हम लोग उसके लिए राजयोगा करेंगे, अमृत वेले सुबह 4:30 बजे अवश्य उठेंगे। फिर दूसरे पहले सुनाया कि मैं लास्ट ईयर आया था और पहले मुझे बहुत ज्यादा अपने स्टेज पर आने के समय बहुत सारा गुस्सा आ जाता था, वो तबला वादन करने वाला था तो उसमें सुर लगाना पड़ता है, तो कभी चारों पहले खिड़की का आवाज आया, झंड का आवाज आया, तो मुझे सिर सुर लगाने में बड़ी तकलीफ होती थी, पर मैं एक्साइट हो जाता था और उसमें ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठता था। अब एक साल बाद मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं गुस्सा छोड़ के गया था एक साल पहले, तो मेरा गुस्सा चला गया। जब मैंने वो सुना तो मेरे को हुआ कि ये स्टेज आर्टिस्ट का ये अनुभव है। फिर मैं दूसरे ग्रुप में गई, मैंने का अनुभव सुना, तो दोनों ऐसे निकली जिन्होंने सुनाया कि यहाँ की बातों को सुनते हुए लगता है कि ये जो सुसाइड कर रहे हैं, फालतू में मर रहे हैं, तो उनको सुसाइड से कैसे रोका जाए, मौत से कैसे रोका जाए, उसके लिए वो कुछ स्टोरी बनाने का वो राइटर ग्रुप है, एडिटर्स एंड राइटर्स, तो हमें यहाँ से वो प्रेरणा मिली है, तो इसलिए मुझे इस ग्रुप में आने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। आपका ये जो ग्रुप है अप्लाइड आर्ट, कि इसमें भी कईयों का अनुभव था, तो ये भैया ने जो बात सुनाई वो बहुत परफेक्ट सुनाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर क्या करें अंदर क्या करना है, जस्ट नाउ क्या करना है,
क्या करना है फ्यूचर, क्या नहीं करना है पास्ट, पास्ट हो गया उसके अनुभव के आधार पर नए नए निर्णय करते हैं। भविष्य तो किसी को मालूम नहीं है, भविष्य का मालूम नहीं है इसलिए सोचने में समय करते हैं क्या कर रहे हैं। और ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट, और वो राज्यों के द्वारा ही संभव है। तो इतना परफेक्ट आपने समझा है, उसका चित्र हमको देखने को मिलेगा, हमको तो नहीं आता है, तो हमको बहुत खुशी होगी। आप हर एक अवश्य ही बहुत विशेष अनुभव होगा। और ये जीवन भगवान वाला जीवन है, ये परमात्मा की देन है और परमात्मा परम कलाकार है, उसके हम सभी कलाकार हैं। अब परमात्मा ये चाहते हैं हम सभी हीरो रोल प्ले करें, जो है जहां है वहां हीरो रोल, अपने अपने क्षेत्र में हीरो हैं। तो वो हीरो रोल की बात कैसे सिद्ध हो सकते हैं, हर एक हीरो रोल बने, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्तित्व एक जैसे है, पास्ट में थे, प्रेजेंट में थे, भविष्य में होंगे। मेरे जैसी कोई व्यक्ति न पास्ट में थी, न प्रेजेंट में है, न भविष्य में होगी। मैं यूनिक हूं तो मेरा रोल भी यूनिक है। जब मेरे जैसा रोल कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता है तो मैं अपने आप में यह एक्टर हूं, अपने आप को हमेशा हीरो एक्टर समझना है। पर बाबा कहते हैं हीरो एक्टर के लिए अपने को जीरो समझना है, आत्मा जीरो है, एक प्रकाश बिंदु है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और भगवान के जैसे हूं, जैसा मेरा बाप वैसे मैं, भगवान का बच्चा भगवान जैसा ही होता है। सेकंड जीवन परिवर्तन, जीरो से हीरो। हम आशा करते आप सभी के जीवन में इसकी पूर्ण प्राप्ति हो, आपके द्वारा औरों को बहुत सारी प्राप्ति हो, ऐसे हमारी
शुभकामना।
शांति, मैं यमुनानगर हरियाणा से आई हूँ और मैं एक लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। तो प्लस वन प्लस टू के बच्चे पढ़ाते हैं। कुछ मैंने जो अनुभव किया है, तो सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, तो बच्चों को पहले फीलिंग हो जाती है कि मैं हम नहीं कर पाएंगे। बहुत जब मेरे शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई कि कैसे बच्चों को, लेकिन जब से मैंने ये बार मेरे फोन में सुने हैं तो मैंने कई लेक्चर्स में सुने, बहुत बच्चों को मोटिवेट किया, तो बहुत बच्चे इसके साथ लेवल देने इसको करने लगे। लेकिन उसके बाद एक चीज और मैंने कहा कि जब हम इतना पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे, हमारा पैकेज कितने का लगेगा। मैं क्या बताऊं, पैकेज तो आपके पीछे पीछे भागेगा, आप अपना काम करो। मतलब कि मैंने यहाँ से जो भी बातें सीखी वो बच्चों के साथ शेयर करी, और यही बोला जैसे भी बोला कि कोई भी कर्म करे तो उसके नाम से शुरू करे और उसके नाम से ही खत्म करे और उसको साथ लेकर चले। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ना शुरू करें, जिसको भी आप मानते हैं उसी से शुरू करें, उसी का धन्यवाद करें और उसी को साथ लेकर करें। और कुछ बच्चों को इससे बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। और उसके बाद कुछ बच्चे सक्सेसफुल भी इतने हुए, उन्होंने मुझे फोन करके भी बताया कि मैम एक तो ऐसा था कि हमें लगता है कि शायद हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज ये बात हमेशा याद रहेगी कि अगर हम ये मानिए कि वे क्या दू। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिल जाता है और जो जो मैं ऐसे सीखती हूँ मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करता हूँ और उन्हें मेरे लिए जरूर देता हूँ पैसा पॉइंट अपने लेक्चर शुरू करने से पहले। तो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने जो है दवाई के वहां पर दिया, स्पेशल दवाई के वहां पर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शांति
एक ग्रुप को इधर खड़ा रखें, हम कुर्सी चार
हम लोग ऊपर
खड़े रहेंगे। ओके, तो कुर्सी जरूरत है
नीचे क्या है, एक ग्रुप हो जाएगा, दो ग्रुप में कुछ ऊपर आ जाएंगे कुछ।
ओके, दीदी का ईश्वर संकल्प है कि हम सब ग्रुप में है, ठीक है। तो आज सब है,
हेलो हेलो,
आइए
हेलो, मैं मूवी में दोबारे
छोटू आप नहीं दिखोगे,
मैं दोनों स्थान पर गई।
भैया
शबन जी ने अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त की जो बात कही, और यह भी आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में योग कराया जाता है, तो स्टेज आर्टिस्ट ग्रुप में कहा है कि एक टीम ने पूरा संकल्प किया कि हम 4:30 बजे का अमृत वेला जरूर करेंगे। आप सभी से भी मैं यह अनुरोध करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, रात को जल्दी सोकर के भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5 के टाइम में आधा घंटा भी आप बैठेंगे ना, बाबा को याद करेंगे, अपने जीरो को भगवान के जीरो से मिलाएंगे, बहुत जल्दी जीरो बन जाएंगे। तो इसलिए आप वो करें, इससे मेरी शुभेच्छा है। ठीक है,
और रेडियो के ठीक 8 बजे हम पहुंचेंगे। और सबको जो भी कल कराए जाएंगे, और साथ ही साथ कल बहुत ही सुंदर शक्तिराज भाई का सेशन है, शक्तिराज भाई ने शक्तिराज भाई का सेशन है, उसके बाद में वैलिडेटेड सेशन है, तो जरूर कल कल प्रिपेयर करके फिर बाबा भगवान के लिए करके आपको छुट्टी शांति में बनूंगा। ओम शांति। पहले